से हम बड़े बड़े उत्सव मना रहे हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी उत्सव को सबने बहुत ही उत्साह से मनाया, सबने बहुत अच्छे प्रयास किए। और पिछले लगभग 15 दिनों से हम लोग बलराम कथा और कृष्ण कथा का आनंद ले रहे हैं, और आज जन्माष्टमी के बाद दोबारा से हम वापिस आ गए हैं 8वें स्कंद में। अब बलराम जी और कृष्ण जी कथा सुनने के बाद आज मोहिनी अवतार की कथा सुनेंगे। असुरों और देवताओं में समुद्र मंथन, समुद्र मंथन से बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई। जहर निकला, शिव जी ने जहर ग्रहण किया, कई अप्सराएं, कई मणि मोतियां इत्यादि निकले, लक्ष्मी जी आई और अंत में नेक्टर अमृत प्राप्त हुआ। और समृद्ध प्राप्त होने के बाद क्या होता है और कैसे भगवान मोहिनी के रूप में अवतरित होते हैं, इसकी चर्चा की गई है भागवतम के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय में। अध्याय का नाम है मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार, श्लोक संख्या 4। ना वयम त्वाम रहिते ते सिद्ध गंधर्व चारणे स्पृष्ट पूर्वां जानिमो लोकैश्च कुतो निभे। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ना नहीं वयम हम त्वा तुमको अमरै देवताओं द्वारा, दैत्यई असुरों द्वारा, सिद्ध सिद्धों द्वारा, गंधर्व गंधर्वों द्वारा, चारणई तथा चारणों द्वारा, ना नहीं अस्पृष्ट पूर्वां किसी के द्वारा कभी भी ना तो भोगी गई ना स्पर्श की गई, जानिमा ठीक से जान लो, लोक ईशय ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशकों द्वारा, चा भी कुतः क्या कहा जाए, नृ भी मानव समाज द्वारा। अनुवाद। मनुष्यों की कौन कहे, देवता असुर सिद्ध गंधर्व चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे। तात्पर्य, असुरों तक ने यह शिष्टाचार निभाया कि उनमें से कोई भी विवाहिता स्त्री को विषय वासना से युक्त होकर संबोधित ना करे। महान विश्लेषक चाणक्य पंडित कहते हैं, मात्रवत पर दारेशु, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की पत्नी को अपनी माता माने। असुरों ने यह मान लिया था कि वह तरुणी सुंदरी मोहिनी मूर्ति जो उनके समक्ष आई थी निश्चय ही अविवाहिता थी। अतः उन्होंने यह मान लिया कि संसार के किसी भी व्यक्ति ने जिसमें देवता गंधर्व चारण सिद्ध सम्मिलित हैं उसका कभी स्पर्श तक नहीं किया होगा। असुर जानते थे कि वह तरुणी अविवाहिता थी, अतः उन्होंने उसे संबोधित करने का साहस जुटाया। उन्होंने यह मान लिया कि वह तरुणी मोहिनी मूर्ति वहां पर उन सबके बीच असुर देवता गंधर्व आदि अपने लिए पति की खोज करने आई है। ओम अज्ञानस्तमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो क्योंकि काफी दिनों बाद इस अध्याय की चर्चा हो रही है इस प्रसंग की, तो मैं पहले तीन श्लोकों का अनुवाद पढ़ लूंगा जिससे कि हम जान सके क्या प्रसंग चल रहा है। पहले श्लोक में बताया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छींकते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिया। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदरी तरुणी उनकी ओर आ रही है। तो जब समुद्र मंथन चल रहा था तो धन्वंतरी अवतार हुआ और एक पात्र में वो अमृत लेकर आए। उस अमृत के पात्र को असुर ने छीन लिया और असुर ने छीनने के बाद वो आपस में लड़ने लगे कि मैं पहले अमृत का पान करूंगा। और तभी उन्होंने देखा भगवान ने मोहिनी का रूप अवतार लिया और एक बहुत अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर आ रही है। उस सुंदरी को देखकर असुर ने कहा, ओ इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है और इसकी तरुण अवस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वह उसका भोग करने की काम वासना से पूरित होकर तेजी से उसके पास पहुंच गए और उसे तरह तरह से प्रश्न पूछने लगे। हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि वे कमल पुष्प की पंखड़ियों जैसे लगती हैं। तुम आखिर हो कौन? तुम कहां से आई हो? यहां आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? और तुम किसकी हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। मनुष्यों की कौन कहे, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे। कितना ओवर कॉन्फिडेंस है आप देखिए असुरों का। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे, जैसे वो वास्तव में समझ गए हूं कि ये स्वयं भगवान है और वास्तव में उन असुरों को धोखा देने के लिए आए हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं हम जानते हैं आप कौन हैं और तुम इतने सुंदर हो और तुम अकेली यहाँ पर आए हो, निश्चित रूप से तुम अविवाहिता हो और तुम एक अच्छे पति की खोज में हो, तो हमसे अच्छा पति और कौन हो सकता है। तो इस जंग से असुर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं मोहिनी अवतार जी के सामने। तो भगवान की सुंदरता तो हम जानते हैं, भगवान के ऐश्वर्य सुंदरता, और जब भगवान मोहिनी का अवतार लेकर आएंगे तो कितने सुंदर होंगे। इंग्लिश भाषा में भी कहा जाता है वुमेन आर कॉल्ड एज फेयर सेक्स, कि स्त्री को हमेशा एक सुंदर स्त्री जो है स्त्री पुरुष से ज्यादा सुंदर दिखाई देती है, मानी जाती है उनका स्वभाव, उनका उनके जो दिखावट इत्यादि। तो भगवान जब मोहिनी रूप में अवतरित हुए होंगे तो कितने अत्यंत अद्वितीय सुंदरी के रूप में प्रकट हुए, और उनके प्रकट होते ही जो असुरगण जिनके हाथ में वो अमृत का पात्र आ गया और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए असुरों ने कितनी मेहनत की थी, कितना परिश्रम किया था, वासुकी को रस्सी बनाकर और मंदार पर्वत को एक उसे चर्निंग रॉड रख के पूरा उन्होंने चर्न किया था। और क्योंकि उन्होंने वासुकी के मुख की तरफ खड़े हुए थे और वासुकी ने सारा जहर निकाला था तो सब के सब एकदम जहर से काले हो गए थे, और इतनी कठिनाइयों के बाद उनको अमृत का पात्र प्राप्त हुआ। और इसके लिए वो लड़ रहे थे कि पहले मैं अमृत का पान करूंगा, लेकिन एक सुंदर स्त्री को देखते ही वो सब भूल गए और उनको लगा कि अब ये हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है, ये जो सुंदर स्त्री है ये हमारे लिए मेडिएटर का रोल प्ले करेगी और हमारे सारी लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे। और भगवान ने भी ऐसा किया, आगे जाके हम देखेंगे बहुत अच्छे ढंग से उनको धोखा दिया, दोनों को लाइन में बिठा दिया था, एक तरफ असुर एक तरफ देवतागण, और असुर को बोला आप तो जानती हैं सब, आप थोड़ा सब्र रखिए, पहले मैं इनको पिला, आएगा आपके पास से अमृत। असुरों के सामने देवताओं को भगवान अमृत पान करा रहे थे, वो चुपचाप बैठे रहे, इतना विश्वास उनको हो गया था कि ये हमारा भला चाहती है। तभी कह रहे हैं हम ऐसा मत सोचो कि हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, हम आपको पहचान पा रहे हैं। तो ये देखते हैं कि उस सुंदरी को देखते ही उनके अंदर भोग करने की काम वासनाएं जागृत हो गई। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर ये भोग काम वासनाएं जागृत हो जाती हैं, वो अपना श्रेयस भूल जाता है और प्रेयस में उसकी रुचि हो जाती है। उनका श्रेयस था असुरों का अमृत प्राप्त करना, लेकिन तुरंत उनके मन को भाने वाले, उनके इंद्रियों को भाने वाले सुंदर स्त्री को देखते ही अपने श्रेयस को भूल गए और प्रेयस में रुचि नहीं लगे, कैसे इसको हम भोग करें, सब कुछ भूल गए। हम देखते हैं हम साधकों के जीवन में भी ऐसा होता है। भगवान की गीता में बताते हैं आपृतम ज्ञान एते न ज्ञानी नु नित्य वैरिणा काम रूपेण कौनते हैं दुष्पूर्ण अनलेन च। जो ये काम वासनाएं हैं, जो लस्ट है, ये ज्ञान को ढक देती है। पूर्ण रूप से बड़े ज्ञानी भी इससे एकदम विस्मित हो जाते हैं। श्री विष्णुचंद ठाकुर बात बताते हैं कि ये काम कैसे काम करता है, काम कैसे काम करता है कि जब कोई पुरुष सुंदर स्त्री को देखता है तो साथ में खड़े कामदेव सबसे पहला तीर छोड़ते हैं और ये तीर कहलाता है मोहन, बिल्कुल मोहित हो जाते हैं, मूर्ख बन जाता है व्यक्ति। और मोहन के बाद जो दूसरा तीर होता है स्तंभन, व्यक्ति एकदम स्तंभ हो जाता है, कि उसको कुछ पता नहीं, सब कुछ भूल जाता है। उसके बाद उन्मादन, एक नशे में जैसा व्यक्ति हो जाता है, उन्माद पागल हो जाता है। फिर शोषण, चौथा तीरा शोषण, जिसमें बहुत ही अत्यंत तीव्र आकर्षण। और पांचवा है तापन, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर जलता है, उसको तपन होती है और वो बहुत कष्ट का अनुभव करता है। और ये भगवान की माया इतनी विचित्र है, व्यक्ति सोचता है जितना ज्यादा उन काम वासनाओं को पूरा करेगा उतना ज्यादा वो खुश हो जाएगा, लेकिन ये नित्य व्यरी है काम, जैसे कि भगवद्गीता बताते हैं। और दुष्पूर्ण अनलीन च, ये अग्नि की तरह चलता ही रहेगा। तो असुरों के अंदर ये जो भोगने की प्रवृत्ति के कारण वो अपने लक्ष्य को भूल गए और बड़ी आसानी से वो धोखा खा गए। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बता रहे हैं, हालांकि वे असुर जो एक असुर मानसिकता है, अक्सर हम एक बार कमलोचन प्रभु ने क्लास लिया था, बता रहे थे कि जो कृष्णा भावनामृत आंदोलन है, ये बहुत पर्सनलिज्म, इसमें पर्सनलिज्म कहें तो एक दूसरे के साथ पर्सनल बिहेवियर, ये कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये पर्सनलिज्म डेवलप होगा कि जब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, और तात्पर्यों में प्रभुपाद लिखते हैं मायावादियों के विषय में, असुरों के विषय में, भौतिकवादियों के विषय में, तो हम सोचते हैं ये बाहर के लोगों की बात हो रही है, मेरे लिए इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं इन सब चीजों से बहुत परे हूं, बहुत ऊपर हूं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि हाँ, जिस भौतिकवादी, जिस असुर, जिस मायावादी की बात कर रहे हैं वो मैं हूं। हम सबके अंदर आसुरी मानसिकता भी है और देवी मानसिकता भी है। आसुरी मानसिकता से ये भोगने की प्रवृत्ति, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी आसुरी मानसिकता। तो ये आसुरी मानसिकता क्या सिखाती है हमें, कि सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी है वो मेरे भोग के लिए है, ये पूरी पूरी सृष्टि की रचना मेरे भोग के लिए की गई है। और एक देवी जो गुण है वो क्या है, कि संसार का सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए है। जो असुर है वो इस संसार को भोग के रूप में देखते हैं, और जो भक्त है वो इस संसार को प्रसाद के रूप में देखते हैं। बस चीज वही है, भोग की प्रसाद, ये देखना है। तो उन्होंने देखा कि ये जो सुंदर स्त्री आई है, ये निश्चित रूप से मेरे हमारे भोग के लिए है। तो ये आसुरी मानसिकता, एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये लिख रहे हैं कि हालांकि वो असुर हैं, असुरों तक ने यह शिष्टाचार निभाया कि उनमें से कोई भी विवाहिता स्त्री को विषय वासना से युक्त होकर संबोधित ना करे। असुरों में भी ये कल्चर था, ये संस्कृति थी कि अगर कोई स्त्री विवाहित है तो उसको वो भोग विषय वासना से युक्त होकर संबोधित नहीं करेंगे। ये एटिकेट्स असुर लोग भी ऑब्जर्व करते थे। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की ये अपेक्षा, उस समय इस संस्कृति, वैदिक संस्कृति में अगर मालूम चल जाए कि स्त्री विवाहित है तो उसको काम वासना से युक्त और कोई संबोधित नहीं करता। यहाँ पे जो असुरगण उस अद्भुत सुंदरी को संबोधित कर रहे हैं, तो उन्होंने एज्यूम कर लिया कि ये विवाहित नहीं, तभी वो उसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है, तुम्हारी जांघें सुंदर है, तुम यहां क्यों आई हो। उसको संबोधित करने का प्रबोध करें, साहस वो तभी जुटा पा रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये विवाहित नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि जब जब भी शास्त्रों में हम कितने उदाहरण है, स्त्री का अपमान होता है, उस कुल का, उस साम्राज्य का नाश हो जाता है। कौन कौन से उदाहरण है, रावण ने सीता जी का अपहरण किया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया कि यही तुम्हारे पूरे असुर कुल का विनाश कर देगा आपका ये कार्य, लेकिन रावण इतना ज्यादा काम वासनाओं से तप था कि उसने किसी की नहीं सुनी, पूरे कुल का नाश हुआ। और कौन सा उदाहरण है, कौरवों का, द्रौपदी। जब द्रौपदी को बाल खींच के दुशासन लाए, तो द्रौपदी ने सभी कुरुवंश के महान महान दिग्गजों से प्रार्थना की, और विश्वामित्र ने तभी कहा कि इससे अब कुरुवंश का पूरा नाश हो जाएगा। तो जिस समाज में नारी स्त्रियों को मान नहीं दिया जाता, वो समाज बिल्कुल निष्कृष्ट हो जाता है। यत्र नारी पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता। और जहां नारियों को आदर दिया जाता है, पूजा की जाती है, वो समाज उन्नति करता है। जितना कोई संस्कृति उन्नत होगी, उतना ही ज्यादा उसमें स्त्रियों को सम्मान दिया जाएगा, स्त्रियों का ध्यान रखा जाएगा। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो असुर गण भी थे, वो विवाहित स्त्री को काम वासनाओं से नहीं देखते थे, उसको संबोधित भी नहीं करते थे। और श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, मातृवत पर दारेशु, कि दूसरे की विवाहित स्त्री को माता के रूप में देखना। क्यों बताया गया माता के रूप में देखने के लिए? क्या कारण हो सकता है? हाँ, माता के प्रति भोग का भाव नहीं, माता के प्रति सेवा का भाव, माता के प्रति आदर का भाव। तो ये एक संस्कृति है और ये किसी भी सभ्य समाज की नींव है, स्त्रियों को सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखना। लेकिन आज के हम समाज में देखते हैं कि बिल्कुल उल्टे कंसेप्ट्स हैं, है ना? वुमेन लिबरेशन के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे, इक्वल राइट्स के नाम पे समाज की संस्कृति की धजियां उड़ रही है और किसी को कुछ पता नहीं समाज के दृष्टि में जा रहा है। भागवत के पहले स्कंद में वर्णन आता है, दसवें अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका जा रहे थे, तो वहां पे सभी के सभी लोग जब भगवान जा रहे थे रथ पे बैठ के, हस्तिनापुर की सड़कों पर इकट्ठे हो गए और उनके सुंदरता को देखने लगे। तो हस्तिनापुर की स्त्रियों ने क्या किया? क्या वो बाहर आई थी, घर के बाहर आए थे? नहीं, क्या किया था उन्होंने, घर की छत पे चले गए और बहुत ही लज्जापूर्वक भगवान की सुंदरता को उन्होंने देखा। तो वहां श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि जो लज्जा है वो स्त्री का कहना है। लज्जा भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति के द्वारा स्त्री को दिया हुआ एक उपहार है और इस उपहार का उनको जरूर उपयोग करना चाहिए। जो स्त्री जितना इस लज्जा को स्वीकार करती है, उसकी सुंदरता, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ती है, उतनी ही वो आदरणीय हो जाती है। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई स्त्री सुंदर भी नहीं है और उसका जन्म नीचे कुल में भी हुआ है, लेकिन अगर वो लज्जा का पालन करती है, तो ऐसे कितने सुंदर और कितने ऊंचे कुल की स्त्रियों से जो कि निर्लज होकर घूमती हैं, उनसे ज्यादा वो आदरणीय है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी इस्कॉन जुहू में बहुत जीबीसी का मीटिंग कर रहे थे उस रूम में, तभी उस कमरे के बाहर एक सफाई करने वाली स्त्री आई, जमादार और उसने घूंघट किया हुआ था और इतने सारे सन्यासियों को देखकर बेचारी चुपचाप कोने में खड़ी थी और प्रतीक्षा कर रही थी। प्रभुपाद जी ने देख लिया, प्रभुपाद ने बोला द मीटिंग इज अर्जेंट, प्रभुपाद ने तुरंत मीटिंग बंद कर दी और सबको बोला बाहर जाइए, वो जो है वो भी प्रतीक्षा कर रही है, और उसको पूरा स्पेस दिया कि वो आए कमरे को साफ करे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये शाइनेस, लज्जा एक कहना है। श्रीला प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे वैदिक संस्कृति थी। प्रभुपाद कहते हैं कि 1945 में वो एक बड़ी ट्रेन रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे, तो उनके सामने ही एक स्त्री बैठी थी जो कि गौना होता है ना, गौने के बाद अपने पति के घर में जा रही थी और उसे पूरा घूंघट किया हुआ था। और वहीं पे 1945 में भी सो कॉल्ड एक मॉडर्न वूमन भी थी, वहां पे उसी कंपार्टमेंट में बैठी हुई थी। तो उसने देखा एक स्त्री ने इतना बड़ा घूंघट किया हुआ है, वो उसका मजाक उड़ा रही थी और उसको छेड़ते बाबर उसका घूंघट ऊपर कर रही थी, वो बेचारी के नीचे कर दिया, फिर जाकर उसने घूंघट ऊपर उठा दिया, उसने नीचे किया। तीसरी बार उसने ऐसे किया, उस गांव के इसने खींच कर थप्पड़ मारा उसको। जब थप्पड़ मारा, प्रभुपाद बोला बिल्कुल ठीक किया और पूरे का पूरा कंपार्टमेंट जोर से हंस पड़ा। तो प्रभुपाद कहते हैं उस स्त्री ने अपनी लज्जा की पूरी रक्षा की। तो ये वैदिक संस्कृति थी। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं तात्पर्य में कि वैदिक संस्कृति में एक स्त्री की वेशभूषा को देखकर ही उसके स्टेटस को पहचाना जाता था। जो विवाहित स्त्री होती थी वो अपने सर को ढकती थी और मांग बीच में सिंदूर होता था। जो अविवाहित स्त्री होती है वो सर को नहीं ढकती थी, जो विधवा होती है वो पूर्ण रूप से सफेद साड़ी बिना बॉर्डर के, और जो कि जिनका चरित्र ठीक नहीं होता था वैश्या इत्यादि, वो अपने बालों को इस ढंग से सजाती थी कि मान बीच में ना होके साइड में होता। तो वैदिक संस्कृति है, इतना यहाँ पे सिस्टम प्रूव होता था। लेकिन आज के समाज में हम देखें तो काफी ओपननेस है, काफी फ्री मिक्सिंग है, तो इससे जो वैदिक संस्कृति है उसका सही ढंग से पालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का सही ढंग से कैसे आज के इस परिप्रेक्ष्य में इस वैदिक संस्कृति को इंट्रोड्यूस किया जाए, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए आचार्यों जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों ने बहुत सोच समझ के किस सिद्धांत को समय परिस्थिति और काल के अनुसार कैसे लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पुरुष और स्त्री बड़े फ्रीली मिलते हैं एक दूसरे के साथ, अब वहां प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, स्त्री और पुरुष को बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए। तो आपको लगता है कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट स्टार्ट भी हो पाता क्या? निश्चित रूप से नहीं। तो प्रभुपाद जी ने सिद्धांत को रखा लेकिन डिटेल्स को थोड़ा एडजस्ट किया वहां की परिस्थितियों को देखते हुए। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, यहाँ पे तो अमेरिका में सब लड़के लड़कियां इकट्ठे घूमते हैं, प्रभुपाद की क्लास को अटेंड करने सब इकट्ठे ही आते थे, उल्टे सीधे वस्त्र डालकर आते थे और प्रभुपाद के सामने उल्टी सीधी हरकतें करते थे। प्रभुपाद ने सब कुछ टॉलरेट किया। धीरे 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 प्रभुपाद ने उनको समझाया कि ये आप बिना विवाह के इकट्ठे नहीं रह सकते, पहले तो विवाह करोगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं। तो प्रभुपाद सन्यासी होते हुए उन्होंने विवाह संस्कार कराया और फिर प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को मंदिर में रहने की सुविधा दी। किसी भी ऐसे भी नहीं था कि पुरुष रहते थे मंदिर में, ब्रह्मचारी आश्रम होता था, नहीं, प्रभुपाद जी के समय ब्रह्मचारिणी आश्रम भी था, और स्त्रियों को उन्होंने इतना भी अनुमति दी कि वो आल्टर के अंदर जाके डीटी वर्शिप भी करें। तो इन सब बातों के लिए प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने उनकी बहुत आलोचना की। प्रभुपाद कहते थे कि ये केवल बातें ही कर सकते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अगर फैलाना है तो ये एडजस्टमेंट्स करना अति आवश्यक है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब प्रभुपाद अपने तात्पर्य लिख रहे हैं तो तात्पर्य में बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो वैदिक संस्कृति है उसके बारे में लिख रहे हैं। कई बार प्रभुपाद की जो शिष्याएं होती थी वो भी प्रभुपाद के पास आती थी, प्रभुपाद आपने क्या लिख दिया, स्त्री कम बुद्धिमान है, स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में रखना चाहिए। जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में पहुंचे तो एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, एक माता जी थी रिपोर्टर, उन्होंने पूछा कि व्हाट यू फील, द वुमेन आर सबॉर्डिनेट टू मैन? प्रभुपाद ने बोला यस, दे आर सबॉर्डिनेट, दे शुड ऑलवेज बी अंडर प्रोटेक्शन। तो माता जी ने बोला लेकिन अमेरिका में तो हम ऐसा सोचते नहीं बिल्कुल, यहाँ तो इक्वल राइट्स हैं। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अमेरिका में ऐसा हो सकता है लेकिन वैदिक संस्कृति यही कहती है। फिर उन्होंने एक और रिपोर्टर ने पूछा, भारत में तो स्त्रियां पुरुषों की दासियां होती हैं, पति की दासी होती हैं। प्रभुपाद ने बोला क्या गलत है, एक पति की दासी है ना, यहां तो पता नहीं कितने पुरुषों की दासी है। तो प्रभुपाद बिल्कुल ब्लंट थे और तात्पर्य में भी प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट लिखते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था तो ये प्रभुपाद की ही इंटेलिजेंस थी, बुद्धिमता थी कि बिना बेसिक प्रिंसिपल्स को कंप्रोमाइज किए डिटेल्स को वो एडजस्ट करते थे। एक बार परम पूजनीय भक्ति भागवत स्वामी महाराज आए थे यहाँ के, तो इस विषय में उन्होंने भी चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि एक पूरे समाज को हम बेसिकली एक समाज की किन किन स्टेजेस से किन किन अवस्थाओं से उन्नति हो सकती है। तो पहली अवस्था तो ये है जैसे कि आजकल है एनिमल लाइफ इन ह्यूमन फॉर्म, के पशुओं की तरह जीना मनुष्य के समाज में, फ्री मिक्सिंग, फ्री सेक्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये पशु समाज है। इससे प्रभुपाद ने क्या लाया, पहले ह्यूमन लाइफ इन ह्यूमन फॉर्म इन ह्यूमन लाइफ, या कि मानवीय जीवन जीना, मानवीय जीवन जीने के लिए वर्णाश्रम, अपने वर्ण और आश्रम के साथ, और तीसरा उत्कृष्ट स्थिति है स्पिरिचुअल लाइफ इन ह्यूमन फॉर्म, कि मनुष्य जीवन में हम एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से देखें, आत्मा के रूप से देखें। तो भक्ति भक्त भागवत स्वामी महाराज बता रहे थे कि उनके गुरु परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज, उनका और प्रभुपाद जी की शिष्य यमुना माता जी का बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो महाराज को ये बात कभी समझ में नहीं आती थी, बोले वो सन्यासी हैं, ये माता जी हैं, घनिष्ठ संबंध वर्णाश्रम के अनुसार तो ठीक लगता नहीं। तो अपने हृदय की बात को पूछने के लिए जब यमुना माता जी थी इस धराधाम में, तो शरणागति फॉर्म में रहती थी, तो महाराज वहां गए उनसे पूछने के लिए। उनसे बोला कि अपूर्ण मम्माने की बात पूछना चाहता हूं कि इस संबंध को मैं कैसे समझू और ये संबंध कैसे विकसित हुआ। तो यमुना माता जी ने बताया कि जब हम एक बारी अमृतसर से आ रहे थे प्रचार करके प्रभुपाद के साथ, तो मैं थी, मेरे पति गुरुदास गिरिराज उसमें ब्रह्मचारी थे, और एक ध्रुस जो कि बाद में भानु स्वामी महाराज बने, हम चार लोग थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकी, एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद से कुछ हिंदी में बातचीत की, प्रभुपाद ने बात की थी, सिग्नल बज गया, तभी प्रभुपाद ने गुरुदास जी को बोला चलो नीचे उतरो, चार भक्तों को नीचे उतार दिया, बोलो यहाँ सेंटर खोलो, ठीक है, और चले गए। तो चारों लोग बिल्कुल नए, एकदम कुछ पता नहीं कहाँ जाना है। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने प्रभुपाद से बात की वो भी गायब हो गए। इन चारों को कुछ पता नहीं दिल्ली में क्या करना है, कहाँ जाना है, बस गुरु की आज्ञा है कि बस आप सेंटर खोलिए। कहीं करके पुरानी दिल्ली में इनको कोई घर की छत मिली कहीं पे, वहां पे चारों इकट्ठे रहते थे। गुरुदास और यमुना जी का नया नया विवाह हुआ था, तो वो जो रहते थे उन्होंने बीच में एक चादर लटका दी, पर्दा, और यहाँ पे गिरिराज जी और वहां पे भानु ध्रुस वहां सोते थे। तो यमुना माता जी कहते हैं मैंने हमेशा गिरिराज जी को अपने छोटे भाई के रूप में देखा और गिरिराज जी ने मुझे हमेशा अपनी बहन के रूप में देखा। तो तब भी महाराज कन्विंस नहीं हुए, हमारे वैष्णव समाज में ये मुंह बोली बहन भाई का चक्कर नहीं है, तो ये तो बोले देवी वर्णाश्रम के अनुसार है नहीं, कैसे समझे बात को। तो यमुना माता जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि प्रभुपाद जी ने हमेशा हमें आत्मा के स्तर पे देखा और हमें पूरा एम्पावर किया कि हम भी एक दूसरे को आत्मा के स्तर पे देखें। तो बोले मैंने हमेशा उनको आत्मा के स्तर में देखा, इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को इस ढंग से एम्पावर किया कि प्रभुपाद के समय जो भक्तिन थी जो मंदिर में रहते थे और जो ब्रह्मचारी थे वो मंदिर में रहते थे, इकट्ठे जाते थे संकीर्तन में। और तमाशा गोस्वामी महाराज कहते हैं हमें एक बारी भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ हम गलत दृष्टि से अपनी बहनों को देखें, सब मिलकर संकीर्तन करते थे और पुस्तक वितरण करते थे। तो महाराज बता रहे कि सीखने की बात यह है कि जब तक हम देहात्म स्तर से ऊपर ना उठें, तब तक तो हमें वर्ण और आश्रम के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। हम अपने आप ही ये अज्यूम नहीं कर सकते, नहीं हम तो आत्मा के स्तर पर देख रहे हैं दूसरे को, हमें ईमानदारी से जानना चाहिए। तब तक फायर एंड बटर का प्रिंसिपल प्रभुपाद कहते हैं, उसको हमेशा सेपरेशन प्रॉपर रखना चाहिए और उसी के अनुसार। ये देखिए, कल मैं इस विषय में सोच रहा था, समय कम मिला, फिर जितना भी हो सका मैंने सोचा कि हमारी जो इस्कॉन सोसाइटी है ये पूरे एक समाज का एक छोटा हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, बहुत कम प्रतिशत लोग अभी कृष्णा भावना भावित में, और पूरे समाज में जो हो रहा है वो सब जानते हैं ठीक नहीं हो रहा। आज समाज में जो भी दुराचार व्यभिचार हो रहा है वो इस गलत कंसेप्ट से कि स्त्रियों को लिबरेट करना है, लिबरेट तो सबको होना है। ये साक्षीनारायण प्रभु ने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम अरेंज किया था प्रोफेसर्स के लिए, तो वहां जाके हम कुछ सेमिनार दे रहे थे। तो सेमिनार के स्टार्टिंग में हमने बोला कि आज की लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं। तब एक प्रोफेसर ने हाथ खड़ा किया, बोला मैं आपसे एग्री नहीं करता, आज का तो समय में समस्याएं बहुत कम हो रही हैं, आप स्त्रियों को ही देखिए उनकी स्थिति कितनी अच्छी हो गई है, जब से कंट्रासेप्टिव आई है स्त्रियां बिल्कुल फ्री हो गई हैं। तो मैं नहीं मानता समस्याएं बड़ी हैं, समस्याएं तो बड़ी कम हो गई हैं, स्त्रियां कितनी मुक्त हो गई हैं, फ्री हो गई हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो ये बुद्धिजी जो प्रोफेसर हैं, जो सोसाइटी को गाइड करने वाले हैं, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, ये उनकी स्थिति है। सरकार ने भी बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हुए हैं कि अगर आप सेक्स करना चाहते हैं इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कंडोम्स का उपयोग कर लो, एड्स नहीं होने चाहिए बस, ये नहीं कर रहे कि आप ये व्यभिचार मत करें, व्यभिचार करिए कोई बात नहीं, पर सावधानी बरती, ये सरकारी प्रोपोगेंडा है। तो प्रभुपाद बताते हैं असली कंट्रासेप्टिव क्या है। असली कंट्रासेप्टिव प्रभुपाद लिख कहते हैं ये है कि जब तक आप अपने आप को ये इस योग्य ना समझे कि आप अपनी संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देंगे, तब तक आप संतान उत्पन्न मत करिए। दिस इज रियल कंट्रासेप्टिव। प्रभुपाद सेज सेंस कंट्रोल नॉट बर्थ कंट्रोल। लेकिन आजकल पूरा फ्रीडम दिया हुआ है, ठीक है, सेंसेस को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो फ्रीडम की निशानी है, बर्थ कंट्रोल आप करें। और लोग इसको पाप भी नहीं समझते, और तभी देखिए समाज में कितना दुख कितना उपद्रव मच रहा है, और किसी को मालूम ही नहीं है कि कारण क्या है। प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद समाज में ऐसी ऐसी बीमारियां क्यों, कैंसर क्यों हो रहा है? प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। ये पूरा ये समझना आम व्यक्ति सोचे आप कैसी बात कर रहे, लेकिन ये वैदिक संस्कृति के नियमों को हिलाएंगे तो कैसे हम सुखी रह सकते हैं। अब चुनौती हमारे सामने ये है कि इस तरह तो समाज बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है, और उसी समाज के हम हिस्से हैं, उसी समाज से हम इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण अवहारण संघ में आए हैं, और केवल हमारे पास ही इसका सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन को इस तेजी से चलते हुए समाज में कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें इस ढंग से समाज में रहना है कि हम उससे प्रभावित ना हो, बल्कि हमें अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए उसको प्रभावित करना है। कैसे करें? क्योंकि हम आज आप ये नहीं कह सकते कि बाहर नहीं, स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। पूर्व काल में सभी स्त्रियां जब जाती थी, हम देखते हैं जब नंद महाराज गोकुल छोड़कर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन छोड़ के नंदगांव जाते हैं, तो स्त्रियां कैसे जाती थी? पालकियों में, पूरा पर्दा, ये नहीं कि पर्दा सिस्टम मुसलमान लेके आए, स्त्रियों को प्रोटेक्टेड रखा जाता था। तो अब तो ऐसा नहीं कह सकते नहीं स्त्रियां, अब तो सब कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, स्त्रियां भी ऑफिस में जाती हैं, वो भी ऑफिस पार्टीज में मदिरा पान स्मोकिंग नॉर्मल है, इसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ऐसे वैल्यूज का जो पतन हो रहा है, ऐसे में कैसे हम वैदिक संस्कृति को डालें, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं। प्रभुपाद जी ने बोला एक तरफ तो ये शहरी जीवन है, इस शहरी जीवन में सारा संस्कृति की जो दुर्गति हुई है ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। इंडस्ट्रीज जो पहले एक सोसाइटी एग्रीरियन सोसाइटी थी, कृषि प्रधान सोसाइटी थी, उससे सारा ये मशीनी युग आ गया, उसके कारण सारा संस्कृति का जो जो नींव थी वो हिल गई। तो क्या किया जाए? तो दो प्रकार से दो लेवल पे हम प्रचार करें। प्रभुपाद जी ने बताया सिटी लाइफ में ठीक है, जो भाषा वो समझते हैं, जो लाइफ स्टाइल उनका है, उसी के अनुसार उनको ढालना, सम हाउ मेक देम टू चैंट, किसी ना किसी ढंग से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें, प्रभुपाद की हरे कृष्ण मोहन का जप शुरू करें, जो तरीका जो टेक्निक उनको समझ आती है उसके अनुसार। और एक दूसरा स्तर प्रभुपाद ने बताया वर्णाश्रम, कि धीरे धीरे वर्णाश्रम को भी इंट्रोड्यूस करें, एक पूरी सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल हो। हाँ, ये वास्तविक तरीका है जीने का, जिसमें हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार रहना है, और धीरे धीरे वनाश्रम का एक ट्रेनिंग सिस्टम है जिससे हम अपने भोगने की प्रवृत्ति से धीरे धीरे क्रमशः मुक्त होते हैं। भोगने की प्रवृत्ति को वन और आश्रम के नियमों के द्वारा उनमें रहकर हम उससे धीरे धीरे मुक्त होंगे, और फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों स्तर पे कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रभुपाद जी के आंदोलन में होते हुए हम भक्तों को एक कन्विक्शन होना चाहिए कि सही तरीका क्या है। दुखी बात यह होती है अभी भी कई माता जी लोग जब प्रभुपाद जी के प्रपट्स पढ़ते हैं, और प्रभुपाद जी ने बिल्कुल प्रपट्स में स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्रियों स्त्री शरीर में जो संरचना है ये कुछ कमियां हैं, साथ साथ में ये भी लिखा है कि क्या क्या खूबियां भी हैं। तो कई माता जी बड़ी ऑफेंडेड महसूस करती हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसे कैसे कह दिया, और कई मैं प्रभुपाद जी के सामने भी आती थी, प्रभुपाद ने बोला अगर आप सोचते हैं कि आप स्त्री हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है, अगर आप सोचते हैं कि आप आत्मा स्त्री के शरीर में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को एक बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि आज भी इस कौन में भी क्या रोल होना चाहिए माता जी का, पूरे इस कौन संस्था में किस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, इसको लेके भी बहुत से अलग अलग मत हैं और काफी ऊपर के स्तर पे बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। और लेकिन हम लोग अपने समुदाय में जो बेसिक चीजें हैं, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, और जो वैदिक संस्कृति है उसके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। और ये रूल केवल ऐसा नहीं है कि अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ ब्रह्मचारी और सन्यासी बस ये बिल्कुल स्थिति से बात नहीं कर सकते, आज के इस शहरी जीवन में रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। हमें प्रचार करना है, हर आश्रम में रहने वाले, हर वन में रहने वाले लोगों से हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कोई स्त्री आए नहीं हम बात नहीं करेंगे, पहले पर्दा डालो। पूर्व संस्कृति में ऐसा होता था कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी होते थे, अगर कोई स्त्री उनसे चेकअप कराने आती थी तो वो उनका हाथ पकड़ के नब्ज चेक नहीं करता था, बीच में एक पर्दा होता था वुडन, ऐसे स्त्री के पीठ में एक धागा बांध दिया जाता था, उस धागे को पकड़ के वैद्य जी देखते थे क्या बीमारी है उसको, वो इतनी एक्सपर्टीज होती थी, वो छूते भी नहीं थे। और भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज भी इसी ढंग से दीक्षा देते थे, देखते भी नहीं थे, स्ट्रिक्ट सेपरेशन। हम कर सकते हैं ऐसा अभी? नहीं कर सकते। तो बातचीत होना ये हम टाल नहीं सकते, ये आवश्यक होता है, लेकिन हम देखेंगे केवल जितनी सेवा की रिक्वायरमेंट है उतना, और इवन जो गृहस्थ आश्रम में भी है उनको भी पर स्त्री को माता के रूप में देख रहे हैं। तो समाज का पतन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग अगर सही ढंग से अपने स्प्यूरिटी को मेंटेन करेंगे तो हम अपने इस अपने समुदाय को भी बचा सकते हैं, और फिर हम एक समाज के लिए आदर्श उदाहरण भी उपस्थित कर सकते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस एक आश्रम के दूसरे आश्रम पे बहुत आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में जाने वाले भक्तों को चाहिए कि वो ब्रह्मचारी को प्रोटेक्ट करके रखें, माता जी लोग ब्रह्मचारी को प्रोटेक्ट करें, उन्हें आशीर्वाद दें। गृहस्थ में रहने वाले भक्तों को वो निर्भर है ब्रह्मचारी पे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और जो ब्रह्मचारी हैं वो गृहस्थों पर निर्भर है अपने रख रखाव के लिए। तो ये अगर हम आप एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को देखेंगे तो हम एक अच्छा समुदाय बना सकते हैं, और फिर हम एक समाज के सामने उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई प्रभुपाद जी के तात्पर्य पड़ेगा और उसके बाद फिर हमारे समुदाय में देखेगा किस प्रकार से व्यवहार हो रहा है तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ऐसा जैसा लिखा है वैसा होता नहीं है। तो इस ढंग से हमें अपना को एडजस्ट करना है। दिस इज वेरी वाइड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा विषय है, और इसमें कई अलग अलग मत है कैसे इसको रिकनसाइल करना, इतने छोटे समय में पॉसिबल भी नहीं था और ना ही मेरी इतनी उन्नत बुद्धि है कि मैं इसमें कुछ कंक्लूजन दे पाऊँ। लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम इसमें हम सबका आप सबका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि ये कितना आवश्यक है कि हम जैसे बताया जा रहा है कि स्त्रियों को पूरा मान देना और उनका संरक्षण करना, और किस प्रकार से ये एक अच्छे समाज की नींव है। हरे कृष्ण। कोई किसी के अपने विचार प्रकट करना चाहे या कुछ? यस माता जी। आफ्टर हाँ बताया सारा वही तो बताया। ड्रेस सेंस की बात कर रहे हैं निश्चित रूप से, जो है वैदिक ड्रेस उसमें ही रहना चाहिए, दीक्षा हो या दीक्षा ना भी हो, जिसको जो कृष्णा भारत की प्रैक्टिस कर रहा है उसको आना चाहिए। लेकिन जब कोई नए नए लोग आते हैं उनके ऊपर हम कोई इम्पोज नहीं कर सकते, वो जैसे भी आ रहे हैं उनको आने दें। हाँ दीक्षा के बाद यस ये अपेक्षा की जाती है कि वो निश्चित रूप से ना केवल मंदिर में ही नहीं, ऐसा नहीं कि मंदिर में तो पूर्ण रूप से वैष्णवी ड्रेस डाल के आए और बाहर जैसा ठीक है। अच्छा हाँ बहुत सही है, करना चाहिए, लेकिन टोकने का अधिकार सब किस हर किसी को नहीं। टोकना शुरू कर दे तो संसार में बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो अगर हम हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ये ठीक हो, हमारे टोकने से स्थिति और खराब हो जाती है। हाँ वैष्णव समाज में भी, हाँ जी वैष्णव समाज में तो खासकर बड़ा ध्यान पूर्वक टोकना चाहिए। बाहर के व्यक्ति को टोक दे वो माइंड नहीं करेगा, वैष्णव समाज में थोड़ा सा भी आपने टोक दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो देखना है, बड़ा सेंसिटिव होना है, किसको टोकना है, कैसे टोकना है, इसके लिए तो पूरी साइंस है, पूरा सेमिनार होता है। टोकना कैसे चाहिए, और यही हम नहीं करते तभी स्थिति और खराब होती जा रही है।
हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कि अभी हम देखते हैं कि वैदिक कल्चर की जहाँ तक बात है, तो वैदिक कल्चर के कुछ जो रेमिनेंट्स कह सकते हैं अवशेष, वो गांव में अभी बचे हुए हैं थोड़े बहुत शेष, शहरों में तो पूरी तरह से वो बर्बाद है। तो लेकिन जहाँ जब हम इस्कॉन की एक भूमिका देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों तक सीमित है बहुत ज्यादा, तो जैसे सिटी लाइफ के लिए हम आपने कहा उसके अनुसार जो हम कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे प्रयास गांव में रूरल एरिया में नहीं ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली दिल्ली में भी, हम देखते हैं दिल्ली में भी जो हमारे हरिनाम संकीर्तन निकलते हैं वो बस उन्हीं एरियाज में निकलते हैं, बस उन्हीं में निकलते हैं आसपास। तो कभी भी दिल्ली का भी एक बहुत बड़ा एरिया जो है रूरल एरिया है, वहां पे बहुत कम हमारी एंट्री है, तो जहाँ पे थोड़ी बहुत वैदिक संस्कृति भी बची हुई है वहां पे अभी भी जो है घूंघट करती हैं औरतें और इस तरह के, तो इसमें कैसे इसको मतलब।
तो अच्छी बात है आपकी, और प्रयास होना चाहिए, रूरल पिचिंग बढ़ानी है हमें, और निश्चित रूप से फार्म कम्युनिटी का भी हमारा स्कोप है, हमारे पास फार्म कम्युनिटी नहीं है, तो ये इस दिशा में कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, सबको करना चाहिए निश्चित रूप से। आई फुली एग्री विद यू कि गाँव में हमारा एंट्रेंस रूल बहुत कम है, जाना चाहिए। अभी प्रयास हो रहे हैं, मायापुर मंदिर की तरफ से आदिवासियों में प्रचार शुरू हुआ है, और रूरल मिनिस्ट्री भी बन रही है, कैसे गाँव में अंदर प्रवेश किया जाए इस पर विचार चल रहा है, और हमें भी निश्चित रूप से करना चाहिए।
हरे कृष्ण, वैसे मेरे दो तीन प्रश्न है मतलब का सवाल है। पहला कि जैसे बताया गया कि वुमेन को संरक्षण में रहना चाहिए, तो जो उनके अगर प्रोटेक्टर्स हैं अगर वो डिवोशनल सर्विस में नहीं है तो ये फिर भी एप्लीकेबल होता है?
या वेरी गुड क्वेश्चन। प्रभुपाद ने बोला कि पत्नी को पति का दासी होना चाहिए और पति को कृष्ण का 100 times दास होना चाहिए। और बोला अगर पति लोफर है फिर तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी ये माता जी को ये अनुमति नहीं देता कि वो बिल्कुल स्वच्छंद हो, फिर भी एटिकेट्स जो है उसका पालन करें। ये समाज की दुर्गति है इसलिए, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं शुरू से, इसलिए बताया जाता है कि जो पूरे समुदाय का जो आधार है ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, उसके ना होने के कारण ऐसा होता है।
तो जी जैसे संरक्षण की बात है, स्वतंत्र तो शायद मुझे ऐसा लगता है कोई मेल भी नहीं रहता था वैदिक संस्कृति में, कि शुरू से वो गुरु के आरक्षण में रहता था, अगर उसने दीक्षा ले लिया तो वो गुरु की प्रोटेक्शन में है, तो मतलब स्वतंत्रता का क्या यहाँ पर रेफरेंस है? मतलब
स्वतंत्रता का रेफरेंस ये है कि स्त्रियों को आजकल ये समझाया जा रहा है कि वो पुरुष के समान है, इक्वल राइट्स, वो भी घर से बाहर निकलें, वो भी ऐसे ऑफिस में काम करें, वो खाली घर में रह के क्यों सफाई करें, बच्चों की देखभाल करें, वो ही क्यों खाना पकाएं, इक्वल राइट्स। तो ये तथा कभी स्वतंत्रता मान लिया जो कि संभव नहीं है, विच इज अननेचुरल।
भाई स्वतंत्रता का क्या ये अर्थ है कि कोई बाहर जाके काम करें तो वो भी अन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी
हाँ आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने बताया कि जो शहरों में स्त्रियां हैं वो डिटी वर्शिप करें, कुकिंग करें और अपने पति के साथ संकीर्तन पे जाएं, और जो फार्म कम्युनिटी में रह रही हैं वो मक्खन बनाएं दूध से, सफाई इत्यादि करें, सिलाई इत्यादि करें और बच्चों का देखभाल करें। अब आज के परिप्रेक्ष्य में बोले नहीं माताओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, हम ऐसा कह नहीं सकते बिकॉज अचानक कोई बदलेगा नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि आज पूरे समाज में जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं इसका आधार यही है कि स्त्रियों को सही ढंग से संरक्षित नहीं किया।
संरक्षण का हम यहाँ पर मीनिंग शेल्टर ले सकते हैं,
शेल्टर यस, संरक्षण मीन्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन।
तो इक्वली एप्लीकेबल नहीं है क्या बोथ
मैन एंड वुमेन? इक्वली अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हो, पुरुष को कृष्ण का दास होना चाहिए, सही तरीके से ईमानदारी से मेहनत करके धन कर कमा के लाए, और स्त्री पूरे श्रम से घर को बच्चों को संभाले, उनकी सेवा करे, ये नेचुरल पोजीशन। अब दोनों ही अननेचुरल पोजीशन है, पुरुष भी कृष्ण का भक्त नहीं है, माता जी भी उनकी बात नहीं मान रहे, तभी सब उल्टा।
दूसरा प्रश्न, जैसे शास्त्रों में हम देखते हैं कि कहीं जैसे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि जो माया के रूप में बहुत ही सावधानी, और ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं उनके प्योरिटी पे, जैसे आपने बताया कि उनका इतना सेक्रेट रोल होता था कि अगर स्त्रियों का डिसरिस्पेक्ट हो तो पूरा का पूरा कुल विनाश हो जाता। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स, दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को हम कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं, मतलब एक ही?
ये दोनों बिल्कुल ठीक है कि स्त्रियों को जो प्रोटेक्शन दिया जाता है ये उनका आदर है, वो कहते हैं कि उनको स्लेव की मनाया जा रहा है, स्लेव नहीं मनाया जा रहा, उनको आदर दिया जा रहा है, दे लाइक चिल्ड्रन, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड, दिस इज गिविंग रिस्पेक्ट टू देम। क्योंकि लोग अज्ञानता के कारण समझते हैं नहीं ये हमें दबाया जा रहा है, और जितना खुला छोड़ा जा रहा है उसका देख रहे हैं कि वो और उनका शोषण हो रहा है, और ये जो कामुक पुरुषों का ही ये पूरा प्रोपेगेंडा है, फेमिनिज्म, इक्वल राइट्स, वो ही इसका फायदा उठा रहे हैं सबसे। स्त्रियों का तो शोषण और बढ़ गया, कम थोड़ी हो, ज्यादा बढ़ गया।
लास्ट सर ने बताया जो कामदेव है और अलग अलग उसके तीर बताए, ये सिर्फ पुरुषों पे एक्ट करते हैं या
नहीं? नहीं दोनों, कोई भी भोगने की दृष्टि से, कोई भोगने की दृष्टि से स्त्री पुरुष को देखेगी या पुरुष स्त्री को, ऐसा नहीं है कि कामदेव तीर खाली पुरुषों पर छोड़ते हैं। It's for any living entity who has enjoying propensity. Yes.
हरे कृष्णा प्रभु जी, हम जो वैष्णव संप्रदाय से बाहर के जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें हम स्त्रियों को साध्वी के या सन्यासी के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में कभी भी माताओं को हमेशा प्रभुपाद ने उनको एक पति के, भाई के, पिता के संरक्षण नहीं रखने की उन्होंने जो है अनुशंसा की है। तो उन बाहर के संप्रदायों में जो स्त्रियां ऐसे साध्वी या सन्यासिनी होती हैं क्या वो प्रमाणित हैं?
आप बताइए। सर हमारे यहाँ पे संप्रदाय में थे जानवा माता जी थी, जानवा माता जी शिक्षा देती थी, बट ऐसे संन्यास वेश धारण नहीं, निश्चित रूप से कोई बहुत उन्नत स्त्री है शिक्षा ले सकते हैं।
हमारे संप्रदाय में बहुत विरले ऐसे उदाहरण हैं, जैसे गंगा माता गोस्वामी थी या जानवा देवी है, और एक श्रीनिवास आचार्य की पुत्री थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हेमलता ठाकुरानी, ये गिने चुने उदाहरण
हैं। जमुना माता जी, जमुना माता जी हमारे प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में कितने ही माता जी ने इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं की, विशाखा माता जी ने सारा फोटोग्राफी, विशाखा माता जी उनके पति यदुवर जी ने प्रभुपाद जी कितनी अच्छी अच्छी फोटोज, कितनी अच्छी फिल्म बनाई, यमुना माता जी ने प्रभुपाद को कितने प्रिय थे, कितनी अच्छी अच्छी सेवाएं की, तो नो रिस्ट्रिक्शन। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिस्टम दिया है जो कि इस कलयुग के लिए मोस्ट एप्लीकेबल, एट द सेम टाइम प्रभुपाद इज कॉशनिंग अस ऑल्सो, अगर उस प्रिकॉशंस को नहीं लेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे हमारे भी डिग्रेडेशन होना शुरू हो।
प्रभु जी जो बोल रहे थे कि रूरल एरिया में अपने को जहाँ पर वैदिक संस्कृति बची है वो प्रचार के लिए, तो मुझे याद आ रहा है कि महाराष्ट्र में रिसेंटली वहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं प्रयाग करके,
प्रयाग
प्रयाग जो प्रयाग मतलब क्या है, वहाँ पर संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, तो उसी का नाम दे करके, तो उसमें गंगा यमुना सरस्वती नाम दिए प्रोजेक्ट के, अलग अलग उसमें भाग हैं, और उसमें एक भाग में होता है कि गांव में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, दूसरे भाग में होता है कि उसमें वहाँ के बच्चों को शिक्षा देना, और तीसरे भाग में उनको भगवान के इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन से जोड़ने का। इसमें बहुत सरलतापूर्वक वो एक अभी क्या बोलना चाहिए कि पायलट प्रोजेक्ट है वो, उसके बाद में फिर उसको आगे उस प्रोजेक्ट को बढ़ाने का, पूरे भारत में विस्तार करने का उनका मुख्य उद्देश्य है। तो काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास वहाँ पर शुभारंभ हो चुका है, और वैसे भी भक्त लोग पहले से ही ऐसे जगहों पर जैसे आपने बताया आदिवासी इलाकों में या गाँव में जहाँ पर इतनी भारी मात्रा में जो धर्मांतरण हुआ है वहाँ पर भी लोग काफ़ी सहनतापूर्वक काफ़ी खतरों का सामना करते हुए भी लोग इस प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। तो भारतीय धर्म संस्कृति को बचाने का इस्कॉन के भक्त लोग जो है बहुत ही डट करके प्रयास कर रहे हैं,
हम ही कर रहे हैं। अभी मुझे धनंजय कृष्ण का जो मिड डे मील देखते हैं, तो पहले जो गाँव में जाके वो मिड डे मील दे रहे थे, अब उन्होंने मिड डे मील भी करते हैं और संकीर्तन निकालना भी शुरू किया। तो बोले गाँव वाले, क्योंकि हम पहले ही वहाँ पे मिड डे मील पहुँचा रहे हैं, हमारे लिए पहले से फेवरेबल है, और अब संकीर्तन को बहुत अच्छे ढंग से एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट वे हैव स्टार्टेड बिलीव पीछे, तो अच्छा हमें करना है। हम पहले होता था लोग कल सब सारा ये दुर्गति शुरू हुई है, लोग गाँव छोड़कर शहरों में, इन्होंने श्लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक फिल्म भी बनाई थी लॉस्ट विलेज। अब विलेज बहुत कम रह गए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था कि भारत की 80% जनसंख्या गाँवों में, अब बिल्कुल उल्टा हो गया, गाँव रहे नहीं गए। तो हम सबको क्या करना है, पूरा शिक्षित होकर प्रशिक्षित होकर गाँव में जाना, कोई प्यार नहीं होगा अभी क्योंकि हमें ये है कि ठीक है फिर शहरों में रहकर हम प्रचार करें, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए हमें मॉडल बना सकते हैं कि ऐसा भी संभव है, अभी हमें लगता नहीं संभव है। तो कई फॉर्म कम्युनिटीज बन रही हैं इस फॉर्म में भी, और यहाँ पे भी हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी से हम प्रार्थना करते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद।